ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ जानना, मानना और उस आधार पर अपने व्यावहारिक जीवन में चलना। अभी तक तो कुछ कुछ अभ्यास आप सभी को जरूर हो रहा भी होगा, हो गया भी होगा, क्योंकि ओम अर्थात मैं। और जब ओम के साथ हम शांति शब्द को जोड़ देते हैं, आई एम पीस, तो ये बड़ा ही सुकून देने वाला सेंटेंस है। एक होती है शांति और एक होती है मन की शांति। अंदर तक आत्मा उस स्थिति में स्थित हो जाती है और फिर कोई शोरगुल, कोई आवाज, कुछ भी नहीं रहता। एब्सोल्यूट साइलेंस, जो सबसे ज्यादा आनंद की स्थिति है। फाइनली जब आत्मा स्वयं के गुणों को अनुभव करती है, कल आपने स्वयं का परिचय जाना, उस परिचय में आपको बताया गया होगा कि आत्मा के मूल जो कोर वैल्यूज हैं, वो 7 कोर वैल्यूज हैं। आत्मा की 7 मूल गुण हैं और उन मूल गुणों को प्राप्त करके आनंद भी उसी में शामिल है, ब्लिस उसी में शामिल है। लेकिन फाइनली द सोल फील्स दैट ब्लिस, जो उसको स्वयं स्वयं की स्थिति में रहने से भी महसूस होता है। और जब आत्मा परमात्मा से मिलन मनाती है तब भी महसूस होता है। जैसी आत्मा है वैसे ही परमात्मा है, या हम कहें उल्टा, क्योंकि पिता पहले है और बच्चा तो बाद में है। लेकिन एक ही बात मैं कहना चाहूंगी, इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी कि आत्मा परमात्मा और ये प्रकृति, ये जो नेचर है, 5 एलिमेंट्स, जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश, ये तीनों चीजें, आत्मा परमात्मा और प्रकृति, ये एटर्नल है, इमॉर्टल है। इनका ना कभी नाश होता ना कभी ये बनती। दे आर ऑलवेज देयर, ऑलवेज, किसी ने नहीं बनाया। परमात्मा तो है ही एटर्नल, लेकिन आत्मा भी एटर्नल है। हाँ, आत्मा के गुणों में जो सत्व था, जो सत्व प्रधानता थी, वो धीरे 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 डिटीरियोरेट जरूर होती है, क्योंकि आत्मा जब देह के साथ पार्ट बजाती है तो उसकी जो सत्व प्रधानता है डिटीरियोरेशन पर शुरू हो जाती है। और वहां रोल, वहां इंटरवीन करते हैं परमात्मा। और परमात्मा जब इंटरवीन करते हैं तो उनका मुख्य कार्य क्या है? ही रेजुवनेट्स द सोल, ही रेजुवनेट्स द सोल। अब आज का जो सेशन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत सुखदाई है। हम सबने अनेक बार परमात्मा को पाने के लिए शायद प्रयास किया होगा। यूं आजकल शायद हम अपने अपने फिजिकल कार्यों में या जॉब में या बिजनेस में ज्यादा व्यस्त होते हैं, क्योंकि आजकल जो ह्यूमन बीइंग है उसके जो एम्स हैं थोड़े से बदल गए हैं। एक समय ऐसा था लोग परमात्मा को पाने के लिए खास प्रयास किया करते थे, परंतु समयांतर में हम जो समय देख रहे हैं वो ऐसा आ गया है कि अब लोग बोले जंगलों में नहीं जाते हैं। आजकल तो बहुत सारे रिलीजियस चैनल्स हैं, टेलीविजन पर सुनते हैं सत्संगों को, या परमात्मा को याद भी करते होंगे, क्योंकि देयर आर सो मेनी डिफिकल्टीज एज सच इन द लाइफ, और कुछ निश्चित नहीं है कल क्या होगा। नोबडी नोज कि कल क्या होगा या नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा, आर वी सेफ और नॉट। कितनी ही मॉडर्न चीजें टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में आ गई है, बट स्टिल एक जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग है वो हर मनुष्य की लाइफ में बनी हुई है, क्योंकि समय बदल गया है। इसलिए कहीं ना कहीं वी आर कनेक्टेड विथ गॉड, भले जानते नहीं है, भले समय नहीं है उसको जानने का या उसके बारे में सुनने का, कम समय निकाल पाते हैं या उसे अनुभव करने का। लेकिन अगर मैं आपको अनुभव से बताऊं, परमात्मा वो है जिनके प्यार का अगर अनुभव हो जाए ना, अगर उनके प्यार की अनुभूति हो जाए, तो उससे बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं है, कोई बात नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति होता है, अगर उसका जीवन खाली खाली है, कोई बात करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, या कोई साथ देने वाला नहीं है, एट टाइम्स मदद की जरूरत पड़ती है, कोई मदद करने वाला नहीं है, तो लगता है कि जैसे कुछ है ही नहीं जीवन में, जीवन खाली हो गया है, कोई प्यार करने वाला नहीं है, कोई दो बात कहने वाला नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है तो कोई दो बात पूछने वाला नहीं है, कोई पानी का ग्लास देने वाला नहीं है, ये भी कोई जीवन है? ये तो ही आज के मनुष्य की बात। लेकिन वो मनुष्य जब परमात्मा को पा लेता है, उसकी मदद का अनुभव करता है, उसकी गाइडेंस का अनुभव करता है, उसके प्रोटेक्शन का अनुभव करता है, उसके प्यार का अनुभव करता है, उसके साथ का, उसकी कंपेनियनशिप का अनुभव करता है, फिर उसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बिकॉज उसके पास सब कुछ है। जहां वो है वहां सब कुछ है, कोई कमी नहीं रहती। इसलिए भक्ति में कहा गया है, जिसका साथी है भगवान, आगे उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। कितनी आंधियां तूफान आ जाएं, नेचुरली आ जाएं या कोई क्रिएट कर दे, लेकिन उस व्यक्ति का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए ये भी कहा है, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, चाहे सब जग बैरी हो। दुनिया दुश्मन हो जाए ना, लेकिन अगर वो साथ है तो मजाल किसी की कुछ नुकसान कर तो दे, कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। हम इतने निश्चिंत हो जाते हैं, इतने निश्चिंत हो जाते हैं, और हमारा निश्चय, हमारा जो निश्चय है उसके ऊपर विश्वास है, वो बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है। और ऐसे कई उदाहरण आपने इतिहास में सुने होंगे। बहुत कॉमन उदाहरण है, वर्षों पहले का ही है, पर सुना होगा आपने मीरा का। मीरा ने कृष्ण की झांकी देखी, मां से पूछा कि ये किसकी झांकी है? तो मां ने कहा तुम्हारा पति। उसने मान लिया और इस कदर मान लिया कि अब उसकी शादी कराना चाहिए माता पिता ने तो उसने मना कर दिया, कहा मेरी तो हो गई, लेकिन फिर भी कराई गई। और जब पूरी कहानी लंबी है, जब राणा जो उसके पति थे, जब उसको जहर का प्याला भेजा, ऐसे वैद से बना के भेजा जहर कि जो इसको छू भी लेगा ना, छू लेगा माना टच कर लेगा जीभा पर, तो वो बच नहीं सकता। लेकिन मीरा उस जहर को प्याले को पी जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ उसको, कारण उसकी श्रद्धा, उसकी भक्ति, उसकी भावना भगवान के प्रति, वो प्यार कि इसमें तो भगवान है, स्वयं श्री कृष्ण है, और पी लिया। पति हैरान रह गया, वैद को सजा दे दी, वैद को सजा दे दी कि तुमने ये कुछ गलत, इसमें कुछ चालाकी की है, ये मरी क्यों नहीं, अभी जो बचा हुआ है ना वो तुम पियो। वैद तो मर गया, लेकिन मीरा की भक्ति ऐसे थी, उसने भगवान की ऐसी स्मृति, ऐसी याद थी उसकी, ऐसा प्यार था, ऐसी भावना थी कि वो वैद भी वापस आ गया, उसने वैद को भी बुला लिया। ऐसे कई उदाहरण हैं, एक नहीं, आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, ऑल इंडिया में, आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, गुजरात में देख लीजिए, कहीं भी, एवरीवेयर यू विल फाइंड समवन और द अदर कि जिनकी ऐसी भक्ति हुई है, की है, जिन्होंने भगवान को ऐसे याद किया है, और भगवान भी तो फिर ऐसे भक्त को रिटर्न देता है, भक्त का ध्यान रखता है, भक्त का भी ध्यान रखता है, बच्चे का भी ध्यान रखता है। भक्ति का रिलेशन स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, फिर भी हम कहते हैं भक्त और भगवान का रिलेशन है, फिर भी थोड़ा सा फॉर्मल हो जाता है, लेकिन बच्चे का रिलेशन तो बहुत क्लोज है। भगवान हम सभी आत्माओं को बच्चे के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, हम उसको बच्चा मान, हम उसको पिता मानकर चलते हैं, हमारा सर्व संबंधी मानकर चलते हैं, हमारे सर्व संबंध। इसीलिए भक्ति में कहा गया है तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रवणिम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। उसको रखवाला कहा है, प्रोटेक्टर कहा है, और करता है वो रक्षा, करता है। बहुतों ने अनुभव किया होगा, हो सकता है आप में से भी किसी ने अनुभव किया हो कि कैसे परमात्मा समय पर रक्षा करते हैं। लेकिन अगर हम जो करते हैं वो तो अपना कार्य करते हैं, लेकिन हम जो करते हैं, हम मनुष्य आत्माएं, हम जो कर्म करते हैं, अगर हम उसकी श्रीमत अनुसार, उसके कहे अनुसार करते हैं, उसकी आज्ञा अनुसार करते हैं, उसके फरमान अनुसार करते हैं, उससे वफा करते हैं, उसे निभाते हैं, इन द सेंस वी लव हिम, हमारी जो क्लासेस होती हैं, जो रेगुलर वर्षों तक चलती रहती हैं, जब से ये विद्यालय की स्थापना हुई, 90th ईयर चल रहा है अभी, तब से लेकर के यहाँ ज्ञान के प्रवचन सत्संग होते हैं रोज फॉर एवरीवन, भले जो भी भाई बहने यहाँ चाहे समर्पित हैं, चाहे यहाँ रेगुलर आते हैं, तो रोज वो प्रवचन सुनते हैं, उसे हम मुरली कहते हैं, परमात्मा की ज्ञान मुरली। तो परमात्मा ने उन ज्ञान मुरली, उन महावाक्यों में कहा हुआ है कि आप सब मेरे लवर हो, हम उनसे प्यार करते हैं। बहुत ऊंची भावना है, बहुत ऊंचा शब्द है ये। आजकल की बात छोड़ दीजिए, नहीं तो प्यार ये तो परमात्मा का गुण है, वो प्यार का सागर है और हम उसे प्यार करते हैं और इन रिटर्न वो हमसे प्यार करते हैं और उसके प्यार का प्रमाण यही है, द मोमेंट यू रिमेंबर हिम, आप प्यार से बुलाओ बाबा, ही विल कम। आपके साथी, संगी, रिलेटिव्स, अगर उनको आप बुलाएंगे वो तो फिर भी जरा दो मिनट आता हूं कह करके दो मिनट लगा देंगे, शायद किसी को सुनाई ना दिए तो आए भी नहीं, पर वो तो सुनता ही है। दिस इज 100% श्योर कि वो तो सुनता ही है। अगर मैंने उसे दिल से बुलाया है, ही विल कम डेफिनेटली, डेफिनेटली, और आकर के खड़ा नहीं रहेगा, आकर के मदद करेगा, आकर के पूछेगा नहीं क्या करूं, उसको तो पता है क्या करना है, इसको क्या चाहिए, ऐसा साथी है वो। परंतु अफसोस, हम उसको जानते नहीं हैं, उसका परिचय नहीं है हमें, उसका प्यार चाहते हैं, प्यार पाते भी हैं, मदद भी अनुभव करते हैं, लेकिन यदा कदा उसे भूल भी जाते हैं। कहा गया है, बिन पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। ये किसके लिए कहा है? उस परम पिता परमात्मा के लिए ये कहा गया है कि उसको पांव नहीं है लेकिन वो चलता है, आता है और चलकर आता है, पर बिना पांव, सुने बिनु काना, बिना कानों के सुनता है वो। अपने बच्चों की आवाज नहीं सुनेगा तो किसकी आवाज सुनेगा? सुनता है, रिप्लाई भी करता है। शिव बाबा, जिसका नाम शिव है, उसको प्यार से हम बाबा कहते हैं, परमपिता परमात्मा, वो सुनता भी है, उसको कान नहीं है हमारे जैसे, लेकिन सुनता है, रिप्लाई करता है। वो अलग बात है, कभी हमारे पास जो ट्रांसमिशन हो रहा है उसमें ब्लॉकेज आ गया है तो ट्रांसमिशन क्लियर नहीं है, कभी कभी नहीं, फोन पर बात करते हैं, मोबाइल पर, कहते हैं पता नहीं आवाज क्यों नहीं आ रहा, कहीं ब्लॉकेज है, क्लियर नहीं है, नेट क्लियर नहीं है। उसका तो क्लियर है, हमारा ही अनक्लियर हो जाता है तो हमें सुनाई ही नहीं देता वो कह क्या रहे हैं। लेकिन ये 100% श्योर है दैट ही रिप्लाइज, और हजारों हाथों से मदद करता है, हजारों हाथों से। तो वो परमात्मा कौन है, उसका परिचय क्या है? बहुत सारी बातें हैं परमात्मा के बारे में जानने की और कहने की, लेकिन समय अनुसार हम उतना ही कहेंगे जितने में एटलीस्ट एक बिगिनिंग में ख्याल तो आ जाए कि यस, दिस इज गॉड, इनको कह सकते हैं परमात्मा। जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, इस तरफ राइट हैंड साइड पर, मेरे राइट हैंड साइड पर ज्योतिर्बिंदु, बिल्कुल पॉइंट ऑफ लाइट, ये डॉट तो फिर भी दिखाई दे रहा है, ये जो डॉट है ये फिर भी दिखाई दे रहा है, वो तो इतना भी नहीं दिखाई देता। अगर पेंसिल से कागज पर आप एक पेंसिल का डॉट लगाते हैं वो भी दिखाई देता है, लेकिन वो इन चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देते। उनको देखने के लिए अनुभव की आंख चाहिए, जिसे कहते हैं दिव्य दृष्टि, अनुभव की आंख। अनुभव से उन्हें देखा जा सकता है, उन्हें महसूस किया जा सकता है, उन्हें महसूस किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हम अगरबत्ती जलाते हैं, खुशबू आ रही है तो पता चल जाता है अगरबत्ती जल रही है। अगरबत्ती देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि देखूं कहां जल रही है अगरबत्ती, पर वो जल रही है। खुशबू से समझ आता है, खुशबू दिखाई नहीं देती, अगरबत्ती की जो सुगंध है वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन खुशबू से समझ में आता है। दूध में मिठास है, शक्कर दिखाई नहीं देती, दूध में जब मिक्स हो गई तो दिखाई नहीं देती उसके बाद, लेकिन मीठा है तो इट मींस कि शक्कर है इसके अंदर। इसी प्रकार परमात्मा का एहसास, उसकी अनुभूति, उस पर विश्वास, उस पर निश्चय, उसके होने से जो निश्चिंतता होती है अंदर मन में कि बाबा है ना। अक्सर आप हमारे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों को ये कहते हुए सुनेंगे, जब भी कोई बात आ जाती है ना, बातें तो आती हैं, छोटी मोटी बड़ी आती हैं, आती ही रहती हैं, 90 साल हो गए तो भी आती रहती है, लेकिन आप सुनेंगे कि बाबा है ना, बाबा बैठा है ना। अक्सर छोटे बच्चे से भी सुनेंगे, वाई बिकॉज उसने बाबा का एहसास किया है, उसको उस पर विश्वास है कि वो है, यही है, मेरे साथ है, मेरा साथी है, ऐसा उसने अनुभव किया है। तो वो परमात्मा जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म दिव्य चैतन्य एक ज्योति के समान, जैसे यहां ज्योति का शेप दिया है, इस पूरे फॉर्म को ये ज्योति का शेप दे दिया है। क्यों? क्योंकि उसके जो गुण हैं वो एक लॉ के माफिक दिखाई देते हैं। अगर देखना चाहें, अगर उसको पिक्चराइज करना चाहें, अगर कोई आर्टिस्ट उसकी उसकी तस्वीर बनाना चाहे, है वो बिंदु। इसीलिए आप चर्चिज में देखिए, वहां पर कैंडल लाइट जलाई जाती है, बहुत सारी कैंडल्स और बीच में एक बहुत बड़ी कैंडल। या आप हिंदूज में देखिए तो दीपक जलाते हैं, उसकी भी लॉ होती है, लेकिन बीच में आप देखिए उसके बिल्कुल एक डॉट होता है, कैंडल के भी बीच में भी एक डॉट होता है, वो यादगार है परमात्मा की। परमात्मा जो स्वयं सूक्ष्म अति सूक्ष्म ज्योतिर्मय बिंदु, जो बिंदु है लेकिन गुणों में सिंधु है, ही इज एन इंफिनिटी इन एन इन्फिनिटेसिमल। रूप में बिंदु होते हुए भी वो गुणों में सिंधु, सिंधु माना सागर, शांति के वो सागर हैं, प्रेम के वो सागर हैं, आनंद के वो सागर हैं, सर्व गुणों के भंडार हैं, वो दिव्य दृष्टि के दाता हैं, दिव्य चक्षु विधाता हैं, वो ज्ञान के सागर हैं। उनकी महिमा में कहा गया है कि अगर सागर की स्याही बनाओ, जंगल की लकड़ी की कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, और साक्षात सरस्वती विद्या की देवी अगर उनकी महिमा लिखना प्रारंभ कर देवे, तो उनकी महिमा पूरी नहीं हो सकती, इतनी उनकी महिमा है। अथा सागर के समान, सागर का अंत नहीं पाया जा सकता, परमात्मा की महिमा का अंत नहीं पाया जा सकता। परमात्मा का अंत पाया जाता है, लोगों ने तो कह दिया है परमात्मा का अंत नहीं पाया जा सकता। नो, उसका अंत पाया जा सकता है, माना उसका परिचय जाना जा सकता है, वो स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं। स्वयं गीता में उनके वचन के अनुसार उन्होंने कहा है कि मैं स्वयं इस धरा पर आता हूं। कब आता हूं? जब धर्म की अति ग्लानि होती है, तब आता हूं जब अधर्म का विनाश का समय आ जाता है, जब नए धर्म की स्थापना का समय आ जाता है, मैं तब आता हूं, अधर्म का नाश और सत्य धर्म की स्थापना करता हूं। इसलिए बच्चे, तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं। कोई बात हो जाती है ना तो मनुष्य का स्वभाव है चिंता करने का, तो गीता के ये वचन है, तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं। ये कौन वायदा कर रहा है? ये कोई कॉमन ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये कोई कॉमन व्यक्ति नहीं है, ये कोई महात्मा नहीं है, ये कोई देवात्मा नहीं है, ये कोई पुण्य आत्मा नहीं है, स्वयं परमात्मा, जिसको पाने के लिए हमने कितने प्रयत्न किए, कितने प्रयत्न, कहां नहीं भटके, कहां कहां तीर्थों पर गए। आज भी पिछले दिनों मुझे कुछ तीर्थ स्थानों पर जाने का मौका मिला। अभी तक इतने वर्ष हो गए, हम एक हरिद्वार के सिवाय कहीं गए नहीं थे, लेकिन पिछले दिनों, पिछले ही महीने मुझे कुछ तीर्थ स्थानों पर जाने का मौका मिला। इतने भक्त, इतने भक्त, इतने भक्त की बात ना पूछो। खाना नहीं खाया है, धूप निकल गई है, अतिशय गर्मी है, लेकिन लाइनों में खड़े हैं। किस लिए? किस लिए? अपने भगवान के दर्शन के लिए। बस एक झलक दिख जाए, एक झलक दिख जाए, भले सामने तो मूर्ति है, किसी मूर्तिकार ने बनाई होगी, किसी ने उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उसको मंदिर में स्थापित कर दिया होगा, लेकिन भक्त के लिए तो वो भगवान है उसका, और उसके दर्शन के लिए कितनी लाइनें लगी पड़ी हैं, और कितने कष्ट सहन करते हैं लोग, वंडर है। और फिर भी प्यासे हैं, फिर भी मिला नहीं, एक तीर्थ, दूसरा तीर्थ, सभी तीर्थ, कहते मैंने चारों धाम कर लिए, परमात्मा मिले, वो तो नहीं मिले अभी तक, तो कब मिलेंगे? तो वो कहते हैं मैं खुद ही आकर मिलता हूं, मैं खुद ही आकर अपना परिचय देता हूं, खुद ही मैं एक साधारण वृद्ध मानव तन में प्रवेश करता हूं और आकर के अपना परिचय अपने बच्चों को देता हूं, अपने भक्तों को देता हूं। बस उसे पहचानने की आंख चाहिए, दैट इज ऑल। तो वो परमात्मा जो ज्योतिर्मय बिंदु है, रूप में बिंदु, गुणों में सिंधु है, जिसकी इतनी महिमा है कि उसकी महिमा को कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट लिखने के लिए दुनिया की कितनी भी चीजें इस्तेमाल कर लें, लेकिन वो पूरी नहीं हो सकती। उस परमात्मा को जानने का मौका आप सब, हम सब भाग्यशाली हैं कि हमको मिला है, कि वो कौन है, वो कौन है। आज कितने ही गुरु महात्मा हो गए हैं जो परमात्मा के बारे में बता रहे हैं, लेकिन चलते 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 हम देखते हैं, सुनते सुनते, कभी कभी हम बजाय परमात्मा को जानने के, उसको मानने के या उसको पहचानने के, हम कहीं ना कहीं देहधारियों में ना अटक जाते हैं, उनको ही मानने लग जाते हैं। यहां भी आपको, हम जैसे कोई ना कोई देहधारी मनुष्य ही, हम भी आपके जैसे ही मनुष्य हैं, सिर्फ हमें आपसे शायद पहले मिल गया ये ज्ञान का परिचय, इसलिए आज हम यहाँ बैठे हैं और आप सामने बैठे हैं। कल आप भी ये परिचय अनेक आत्माओं को दे सकते हैं, लेकिन यहां ये बात घोट घोट करके समझाई जाती है कि यहां जो भी ज्ञान देने वाला है ये ज्ञान उसका नहीं है। हम जो ज्ञान की बातें आपको यहां सुनाते हैं ये हमारी नहीं है, हमने अपनाई है, हमने इनको धारण किया है, हम इनको फील करते हैं, हमारे जीवन में ये बातें हैं, लेकिन हमें उसने सिखाई है, हमको बताने वाला भी वो है, ये उसकी बातें हैं, उसका ज्ञान है। इसलिए आपको याद किसको करना है, हमको नहीं करना। ऐसा नहीं कल उठ करके आप दीदियों को याद करने लगे, आपको याद करना है उसको, वो परमपिता परमात्मा, वो निराकार, क्योंकि उसको अपना तो कोई शरीर है नहीं, अपनी देह नहीं है उसको, और अगर उसको भी देह हो अपनी, फिर तो वो हमारी तरह हो जाए, हमारी तरह हो जाए। और कैसे वो निराकार है ये भी मैं आपको स्पष्ट करूंगी, क्योंकि जब मानने की और जानने की बात आती है तो बहुत सारी बातें मानी गई हैं परमात्मा के बारे में। कहते हैं मुंडे मुंडे मते बिना, जितने सिर उतनी बातें। कोई कहता है मेरे भगवान मैं तो श्री कृष्ण को याद करता हूं, कोई कहता है मैं तो श्री राम को याद करता हूं, कोई कहता है मैं तो हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ता हूं उनको याद करता हूं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है मैं तो प्रकृति को ही सब कुछ मानता हूं, नेचर इज गॉड, वही सब कुछ है। कहता है मैं तो ठीक है जो है सो है, मैं तो ज्यादा कुछ मानता ही नहीं, ज्यादा इन बातों में जाता ही नहीं। परंतु ये भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है, तो ठीक है क्या? आखिर भी परमात्मा ने इसके बारे में बहुत अच्छा सुंदर स्पष्टीकरण किया हुआ है कि मैं कौन हूं। जैसे साइंस और मैथमेटिक्स में हाइपोथेसिस के आधार पर हम शुरुआत करते हैं, लेट दिस बी एक्स, लेकिन उस एक्स के बारे में अगर हमें कुछ बातें पता हो, उन बातों को यूटिलाइज करके हम एक्स की वैल्यू को डिराइव करते हैं। सिमिलरली हियर वी डू नॉट नो हु इज गॉड, बट वी नो सर्टेन थिंग्स अबाउट हिम। जैसे हम कहते हैं कि वो दाता है, देने वाला है, ये कॉमन बात है उसके लिए। किसी को कहिए कैसे चल रहा है, कहते हैं सब उसकी कृपा है, तुरंत दृष्टि ऊपर जाती है, उसकी माना ऊपर वाले की, ऊपर वाले की कृपा है, क्योंकि जानते हैं वो ऊपर रहता है। अब देखो ये भी जानते हैं, परमात्मा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, शांति मिलेगी उसी के पास मिलेगी, क्यों? वही शांति का सागर है। सच्चा प्यार मिलेगा उसी के पास मिलेगा, दुनिया के प्यार तो झूठे हैं, आज प्यार करते हैं कल नाराज हो जाते हैं, दुनिया के प्यार तो सच्चे नहीं है। तो परमात्मा के बारे में जानते हैं कुछ कुछ, पर उसको नहीं जानते, विडंबना है, वो कौन है ये नहीं पता। सो वी गो फ्रॉम नोन टू अननोन। साइंस में भी ऐसा ही होता है ना, मैथमेटिक्स में ऐसा ही होता है, वी गो फ्रॉम नोन टू अननोन। वी नो सर्टेन थिंग्स अबाउट गॉड बट वी डू नॉट नो हु इज ही। तो यहां परमात्मा स्वयं आकर के, जब हम नहीं जानते वो कौन है और कोई उसका परिचय दुनिया में दे भी नहीं सकता और किसी ने आज तक दिया भी नहीं, लोगों ने तो कह दिया, साधु संत महात्माओं ने कह दिया नेति नेति, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, ढूंढते रहे उसको पर जानते नहीं। तो जब कहां न मिला, जंगलों में नहीं मिला, मंदिरों में नहीं मिला, गुरुद्वारों में नहीं मिला, चर्चिज में नहीं मिला, लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि मैं ही ईश्वर हूं, वहां भी नहीं मिला, प्रकृति में भी नहीं मिला। जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश कहाँ है? पांचों में नहीं है। अग्नि तो जला देती है, जल डुबो देता है, क्योंकि ये पांच तत्वों का हमारे मन में बहुत ये फिक्स हो गया है कि जल मन अगर ज्यादा अतिवृष्टि हो गई तो डूब जाएंगे, अनावृष्टि हो गई तो अकाल पड़ जाएगा, सूखा आ जाएगा, धरती फट गई तो मकान सारे गिर जाएंगे, तूफान आ गए, साइक्लोन्स आ गए, वायु का वेग इतना तेज हो गया, उड़ जाएंगे। होता है ना ऐसा, जब ये पांचों तत्व अपनी चरम सीमा, विनाश की चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, तो इनमें भी तो भगवान नहीं है, तो आखिर भी कौन है वो? तो इसलिए जब कहा कि वो वी गो फ्रॉम नोन टू अननोन, व्हाट डू वी नो अबाउट हिम, हम कुछ चार पांच विशेषताओं के द्वारा ये जानेंगे पहले परमात्मा कौन है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, और उन विशेषताओं के आधार पर हम ये जानेंगे कि वो किस पर फिट होती है। सबसे पहली बात कि जो भी परमात्मा, जिसको हम कह सकते हैं परम आत्मा, ऐसी आत्मा जो परम है, सुप्रीम, हम सोल्स, वो सुप्रीम सोल, तो सबसे पहली बात कि जो भी परमात्मा हो वो सर्व धर्म माननीय होगा। जो यहाँ लेफ्ट में, मेरे लेफ्ट में इस पिक्चर में देखिए, वो दिखाया है कि वो सर्व धर्म माननीय होगा, सर्व धर्म के लोग उसे मानते होंगे। कोई भी धर्म ऐसा नहीं होगा जो कहे मैं इनमें नहीं मानता। अब मान लीजिए हम कहते हैं श्री कृष्ण भगवान है, तो हिंदूज मानेंगे, हिंदूज में भी एक ग्रुप मानेगा, जो श्री राम को मानने वाले होंगे वो नहीं मानेंगे। कहते हैं जब श्री कृष्ण के भक्त अगरबत्ती जलाते हैं तो श्री राम के भक्त उसकी सुगंध लेना पसंद नहीं करते, ऐसा ही वैसा वर्षा है। तो क्रिश्चियंस का क्या, सिखों का क्या, बाकी धर्मों का क्या? इसी प्रकार कोई भी देहधारी, आप क्राइस्ट को ले लीजिए, गुरु नानक जी को ले लीजिए, इब्राहिम को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, जितने भी धर्म गुरु हुए हैं, उन सब धर्म गुरुओं को उनके धर्म वाले लोग मानते हैं, सब नहीं मानते। सबको वो मानेंगे, उसको सब मानेंगे जो देह से परे है, जो ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। इसलिए आप देखिए यहां चित्र में, आप चित्र के लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए, सबसे ऊपर रामेश्वरम, साउथ में राम के भी ईश्वर। जब लंका जाना था श्री राम को, रावण से युद्ध करना था, तो राम ने किसको याद किया? राम ने शिवलिंग की स्थापना की सागर के किनारे, जो आज रामेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध है, राम के भी ईश्वर। इसी प्रकार मथुरा वृंदावन में, यहां चित्र में नहीं है, गोपेश्वरम, श्री कृष्ण के भी ईश्वर वहां दिखाया गया है। उसके बाद आप देखिए यहां लेफ्ट में ही अमरनाथ, हर वर्ष कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आप जाते हैं, वहां हर वर्ष अमरनाथ में एक बर्फ का शिवलिंग बनता है, अमर बनाने वाले नाथ। तत्पश्चात आप देखिए विश्वनाथ, काशी बनारस में पूरे विश्व के नाथ, सोमनाथ, सोमरस पिलाने वाले नाथ, वेरावल गुजरात में, पशुपतिनाथ नेपाल में, जो पाशों में बंधा है, पशु माना जो पाशों में बंधनों में बंधा है, उन बंधनों से छुड़ाने वाले नाथ, तो ये अर्थ सहित नाम है उनके। और उन नामों से उस परमात्मा जो निराकार है, जो ज्योतिर्मय बिंदु है, उनको याद किया जाता है। जो निराकार माना, निराकार का मतलब ये नहीं है कि जिसका कोई आकार नहीं है, आकार है। कैसा आकार है? निराला आकार है। उसका कॉमन हम मनुष्यों जैसा आकार नहीं है, उसका आकार है ज्योतिर्मय बिंदु, वो परमात्मा। इसीलिए आप देखिए राइट हैंड साइड पर सबसे ऊपर क्राइस्ट, उन्होंने क्या कहा, गॉड इज डिवाइन लाइट, आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड। उन्होंने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूं, आप मुझे याद करो। जब उनको क्रूसीफाई किया गया तब उन्होंने क्या कहा, ओ फादर प्लीज फॉरगिव देम बिकॉज दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। तब भी उन्होंने उसको पिता के रूप में याद किया। गुरु नानक ने क्या कहा, एक ओंकार सत्यनाम कर्ता पुरुष निर्वैर निर्भय अजोनी अजन्मा परमात्मा के लिए। इसके नीचे एक तस्वीर है जहां पर एक व्यक्ति बैठा है घुटनों के बल और 3 फीट के एक स्टैंड पर छोटा सा शिवलिंग के आकार का पत्थर रखकर उस पर मेडिटेट कर रहा है। उस पत्थर को कहते हैं चिनकॉन सेकी, मीन्स शांति देने वाला। ये जापान की प्रथा है। जापान में लोग अक्सर महात्मा बुद्ध को याद करते हैं, महात्मा बुद्ध के बड़े बड़े स्टैचूज बनाते हैं। लेकिन एक ग्रुप ऐसे ही उस लिंग पर मेडिटेट करता है, वो लिंग के समान पत्थर है, चिनकॉन सेकी पीस गिवर, वहां भी याद करते हैं। इसी प्रकार मक्का मदीना में संगय अश्वत्थ, जहां मुस्लिम लोग जब हज करने जाते हैं मक्का मदीना में, तो उस पत्थर के चारों ओर चक्र लगा करके उसको अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। कहते हैं मोहम्मद साहब ने ये पत्थर यहां रखा था, उसे कहते हैं संगय अश्वत्थ। तो इस प्रकार आप देखेंगे वो पत्थर भी ज्योति के शेप का है। उस ज्योति रूप परमात्मा को सर्व धर्म की आत्माओं ने माना है और याद किया है, उसकी पूजा की है। वो निराकार जिसको देह नहीं है, वो देह से अतीत है, देह से परे है, उसको अपनी कोई देह नहीं है। हाँ वो पर काया प्रवेश कर, देह में प्रवेश कर अपना कार्य करता है और चला जाता है, फिर आता है और जाता है। इस प्रकार वो अपने बच्चों से मिलता है। तो परमात्मा वो जो सर्व धर्म माननीय है, सर्व आत्माओं का पिता है। दूसरी बात, परमात्मा वो जिसका कोई माता पिता नहीं है, वो सबका माता पिता है, सर्वोच्च सबसे ऊंचा। माता पिता का संबंध सबसे ऊंचा है दुनिया में। हम कहेंगे हमारे माता पिता हमसे ऊंचे हैं, हमारे माता पिता कहेंगे हमारे माता पिता हम सबसे ऊंचे हैं, उनके माता पिता अपने माता पिता के लिए कहेंगे, तो ये चलता आता है। तो सबसे ऊंचा सर्वोच्च वो परमात्मा जिसको कोई माता पिता नहीं, वो सभी का माता पिता है। तीसरी बात कि वो सापेक्ष बातों से न्यारा है। सापेक्ष माना कंपैरेटिव, जन्म मरण कर्म फल लाभ हानि निंदा स्तुति मान अपमान जीत हार, इन सब से न्यारा है। परमात्मा को ये सब छूता भी नहीं है, क्योंकि जन्म नहीं है तो मृत्यु भी नहीं है। उसे अजन्मा कहा है, वो स्वयंभू है, वो हमारी तरह जन्म नहीं लेता है। और क्योंकि देह नहीं है तो मृत्यु भी नहीं है, तो बाकी सब भी नहीं है। जैसे ये हॉल, अब नीचे मेडिटेशन हॉल है, उससे बड़ा है, लेकिन अगर इससे बड़ा कोई दूसरा हॉल हो तो हम क्या कहेंगे, ये हॉल उस हॉल से छोटा है। अब नीचे जो शांतिवन में हॉल है, उस हॉल से ये हॉल छोटा है। तो कंपैरेटिव, सिमिलरली ये जो बातें कही गई हैं परमात्मा के लिए, ये कंपैरेटिव सापेक्ष बातें, वो इनसे न्यारा है। चौथी बात कि वो देने वाला दाता है, वो लेता नहीं है। नेवर, नेवर मीन्स नेवर, सदा देता है। एक वही है जो देता है, इसलिए क्या कहावतें बनी हुई हैं, देने वाला जब देता है ना तो छप्पर फाड़ कर देता है, देंदा दे ना थके लेंदा थक जावे, पंजाबी में कहा गया है। और पांचवी बात कि वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, सब कुछ। हाँ, वो थॉट रीडर नहीं है। अक्सर कहते हैं मैं थॉट रीडर नहीं हूं, मुझे क्या जरूरत पड़ी कि बैठ करके आपके मन के विचारों को जानूं। आपके मन में तो पता नहीं कैसे कैसे विचार चलते हैं, मैं नहीं पढ़ता आपके विचारों को, लेकिन जानता सब कुछ हूं। त्रिकालदर्शी हूं, त्रिनेत्री हूं, त्रिलोकीनाथ हूं, वो सब कुछ जानने वाला है। इसलिए अक्सर हम कॉमनली कह देते हैं जब हमें कुछ मालूम नहीं होता, वी से गॉड नोज, भगवान जाने, क्योंकि वो जानता है, तभी तो आकर बताता है, तभी तो उसको ऑल नॉलेजफुल कहते हैं, ज्ञान का सागर कहते हैं। तो वो ज्ञान का सागर परमात्मा। अगर इन पांचों के आधार पर हम इसको चेक करना चाहें कि क्या एक देहधारी परमात्मा हो सकता है, क्या वो सर्वधर्म माननीय हो सकता है, नहीं, अपने धर्म में उसकी मान्यता है, सब धर्मों में नहीं। क्या वो सर्वोच्च, क्योंकि उसके भी कोई माता पिता हैं, कृष्ण के माता पिता थे, श्री राम के माता पिता थे, जितने भी देहधारी हुए हैं सबके माता पिता हैं। और जब जन्म है तो मृत्यु है। कई प्रसंग आते हैं जब दिखाते हैं कृष्ण की कैसे उसको वो तीर लगा और खून बहता गया बहता गया बहता गया। बड़ी सुंदर, लेखकों ने बड़े सुंदर ढंग से इन कहानियों को लिखा हुआ है और कैसे उनकी मृत्यु हुई। तो श्री कृष्ण तो देहधारी हैं, श्री राम भी देहधारी हैं, अन्य देवी देवताएं वे भी देहधारी हैं, अन्य धर्म गुरु वे भी देवी देहधारी हैं। तो धर्म आत्माएं और परमात्मा दोनों में अंतर है। धर्म आत्माओं में कोई भी धर्म आत्मा ऐसी नहीं हो सकती जिनके ऊपर ये पांचों बातें फिट होती हो, ना वो सर्वज्ञ हो सकते। एक मनुष्य कितना जान सकता है अपने बारे में, चलो थोड़ा बहुत फिर भी कोई ज्यादा जान सकता हो, कोई एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट लोग होते हैं कई बार, लेकिन फिर भी परमात्मा जितना तो नहीं ना, सर्वज्ञ तो नहीं कह सकते। और मनुष्य को अपनी देह के लिए ही इतना चाहिए, वो दूसरे को क्या देगा, उसको अपनी देह की रिक्वायरमेंट कितनी है। जन्म से लेके मृत्यु तक, जन्म से पहले बच्चे की तैयारी शुरू हो जाती है और मृत्यु को पा जाता है, देह से निकल जाती है आत्मा, तो भी उस देह का अंतिम संस्कार करने के लिए भी क्या नहीं चाहिए, ब्राह्मणों को खिलाने के लिए क्या नहीं चाहिए। तो मनुष्य को अपनी देह के लिए सब कुछ चाहिए, तो देने वाला कैसे हो सकता है। इसलिए परमात्मा जो स्वयं निराकार है, जिसका रूप कैसा है, निराकार माना जिसका रूप भी है और नाम भी है। लोगों ने कह दिया वो नाम रूप से न्यारा है, वो नाम रूप से न्यारा नहीं है, उसका नाम भी है और रूप भी है। रूप तो हमने बताया ज्योतिर्मय बिंदु, जो यहाँ इस पिक्चर में दिखाया है। शिवलिंग के ऊपर आपने देखा होगा तीन लाइनें होती हैं और उसके बीच में एक छोटा सा डॉट बिंदु होता है, वो तीन लाइनें प्रतीक हैं कि वो ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता है, इसीलिए उनके ऊपर बेलपत्र चढ़ाया जाता है जिस पत्र को तीन पत्ते होते हैं, और बीच में जो छोटा बिंदु है वो उस परमात्मा का एक्चुअल प्रतीक है। लेकिन भक्तों ने उस पर ऑफरिंग्स कुछ चढ़ाने के लिए, फूल फल दूध पानी वो चढ़ाने के लिए उसका रूप बड़ा बना दिया है, लोग तो कई कई फिट का शिवलिंग भी बना देते हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं मैं तो ज्योतिर्मय बिंदु, बिल्कुल सुख जैसे तुम हो वैसा ही मैं हूं। वो साइज में बड़ा नहीं है इसलिए उसको परमात्मा नहीं कहते हैं, वो गुणों में बड़ा है, कर्तव्यों में बड़ा है, शक्तियों में बड़ा है। इसीलिए वो ज्ञान का सागर है, हम ज्ञान स्वरूप हैं, वो प्रेम का सागर है, हम प्रेम स्वरूप हो सकते हैं। वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, हम मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हो सकते हैं। पर हम ऑलमाइटी अथॉरिटी, हम सर्वशक्तिमान नहीं है, मास्टर सर्वशक्तिमान। बच्चा होता है वो मास्टर होता है ना, तो हम उसके बच्चे हैं। और वो परमात्मा जिनको सबने माना, सब धर्म की आत्माओं ने माना, उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या? अभी माता पिता हो तो नाम रखें, उनके तो माता पिता नहीं है, तो किसने उसके नाम रखे? भक्तों ने जो नाम दे दिए उसके नाम हो गए, अनेक नाम। जैसे इस पिक्चर में उसे सोमनाथ भी कहा है, तो पशुपतिनाथ भी कहा है, तो विश्वनाथ भी कहा है, उसे अमरनाथ भी कहा है। कितने नाम दिए हैं उसे, अनेकों नाम दिए हैं, और उसने सब नाम स्वीकार कर लिए हैं, क्योंकि गुणवाचक नाम है। उसका नाम संज्ञावाचक नहीं है, मनुष्यों के नाम संज्ञावाचक होते हैं, परमात्मा का नाम गुणवाचक है। जैसे मनुष्यों का नाम कुछ होगा, कर्तव्य कुछ और ही होगा, नाम होगा शांति, और जितनी अशांति वो फैलाती होगी ना, कोई नहीं फैलाता होगा। होते हैं ऐसे लोग, लोग कहते हैं पता नहीं माता पिता ने कैसे नाम शांति रख दिया, इनका नाम तो अशांति होना चाहिए था। क्योंकि होते हैं ना कई लोग दुनिया में ऐसे, नाम होगा सेठ और होगा गरीब, इसलिए सुनाते हैं छोटी सी चुटकुला कह लो, कहानी कह लो, कि एक बार एक भाई था, उसका नाम था छज्जू। तो धीरे धीरे बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद माता पिता ने उसकी शादी कर दी। शादी करने के बाद उसकी पत्नी को ये नाम पसंद नहीं आया, उसने कहा ये भी कोई नाम होता है, कोई भी पूछता है आपके पति का नाम क्या है तो कहने में भी शर्म आती है, आप अपना नाम बदली करो। कहां से बदली करूं, मैं तो इसी नाम से जाना जाता हूं। नहीं नहीं आप जाओ, कोई ना कोई नाम मिलेगा। बेचारा निकल पड़ता है आज्ञाकारी होके, और जब निकल पड़ता है तो रास्ते में जाता है एक घर में, एक बहन वो धान नहीं कूटते हैं चावल को, जब छिलका होता है उसको कूटते हैं, कूट रही थी। क्या कर रही हो बहन? धान कूट रही हूं। क्या नाम है? लक्ष्मी। लक्ष्मी और धान कूट रही है, लक्ष्मी तो धन की देवी होती है, ऐसा सोचकर वो निकल जाता है वहां से, मन ही मन आगे बढ़ जाता है ढूंढते हुए कि कोई और नाम अच्छा सा मिल जाए, कम से कम गुणवाचक तो हो। फिर देखता है रास्ते से एक भिखारी चला आ रहा है, आपका नाम क्या है? धनपद मल। कहते फिर भीख क्यों मांग रहे हो? क्या करूं, मेरे माता पिता ने मेरा यही नाम रख दिया। वहां से भी निकल पड़ता है और बहुत नाम पूछते पूछते शाम हो जाती है। आखिर भीड़ में कुछ लोगों को देखता है, कुछ लोग चले आ रहे हैं एक अर्थी को लेकर के, खुश हो जाता है, चलो संसार से एक नाम खाली हो गया, ये वाला नाम मैं अपना रख लूंगा। तो जब भीड़ नजदीक आती है, पूछता है ये किसकी मृत्यु हो गई, तो भीड़ में से एक व्यक्ति रिप्लाई करता है, सेठ अमरनाथ जी मर गए। सेठ अमरनाथ जी मर गए? अब उदास हो जाता, कहते अब नहीं मैं अपना नाम बदलूंगा, मैं तो जा रहा हूं घर वापस। भूख भी लग जाती है, घर जाता है और जब पत्नी पूछती है तो कहते पहले खाना तो दो, तो वो कहती है पहले नाम तो बताओ, तो कहता है लक्ष्मी कूटे धान, धनपद मांगे भीख, अमरनाथ जी भी मर गए तो मेरा छज्जू नाम ही ठीक, कि मैं जो हूं वो ठीक हूं मैं। क्योंकि दुनिया में तो किसी का नाम गुणवाचक है ही नहीं, सारे संज्ञावाचक नाम है, मैं कौन सा नाम रखूं? अच्छा है छज्जू का कुछ मीनिंग ही नहीं है, और अपना उसी नाम से कहता है मैं तो चल पड़ूंगा। कहने का भाव यही है कि मनुष्यों के नाम ऐसे ही हैं, नाम तो आजकल तो नाम रखने के लिए बच्चों का कई बुक्स बन गई हैं। मेनका गांधी ने एक बुक निकाली हुई है, नेट पर ढूंढ लो आप, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर नाम मिल जाएंगे। कई पेरेंट्स बहुत ध्यान देते हैं बच्चों का नाम रखने के लिए, बहुत मेहनत करते हैं कि मेरे बच्चे का नाम बड़ा यूनिक होना चाहिए, बट अफसोस मीनिंग जो उस नाम का होता है वो गुण उस बच्चे में अक्सर नहीं होते हैं। आजकल तो साउथ साइड स्पेशली लोग नाम रखते हैं ना, रामा कृष्णा। हमारे पास भी यहाँ एक भाई है डाइनिंग में, बहुत प्यार से भोजन कराते हैं वो सभी को, उनका नाम रामा कृष्णा ही है। तो राम भी और कृष्ण भी दो दो नाम रख लिए। अब उनके माता पिता ने सोचा होगा शायद दो नाम ऐसा रखने से इसके अंदर दोनों गुण आ जाएंगे, आ भी गए हैं और भी आ जाएंगे, परंतु क्वेश्चन उठता है ये तो अब आ गए जब परमात्मा स्वयं मिले। किसी के तो तीन तीन नाम होते हैं एक ही नाम में, शिव राम कृष्ण, शिव भी राम भी कृष्ण भी, परंतु संज्ञावाचक। और परमात्मा का नाम कैसा है? गुणवाचक, कर्तव्यवाचक। उनको हम कहते हैं प्यार से शिव। शिव का मीनिंग है कल्याणकारी, सबका कल्याण करने वाला। और क्योंकि वो हमारे पिता हैं, बाबा कहते हैं उनको, बहुत सारी भाषाओं में पिता को बाबा कहा जाता है, तो हम उन्हें शिव बाबा कहते हैं। इसलिए आप हम सभी भाई बहनों की जुबान पर शिव बाबा ये शब्द अक्सर सुनेंगे, अक्सर सुनेंगे। हम अक्सर एक दूसरे से पूछेंगे भोजन करते समय कि शिव बाबा याद है, क्योंकि उसको याद करके ही तो भोजन करना है। भोजन में तभी तो वो ताकत आएगी, नहीं तो आजकल तब भोजन है कैसा, पता नहीं कौन से केमिकल्स डाल करके उगाया जाता है, उसमें ताकत है कहाँ। और पता नहीं कौन से इंजेक्शन लगा करके उस सब्जियों को बड़ा किया जाता है। कभी कभी तो लोगों को डर भी लगता है कि क्या करें, खाए नहीं खाए, ऑर्गेनिक के नाम पर पता नहीं क्या क्या बिकता है। लेकिन जो परमात्मा की याद में उसे खाते हैं, एक बहुत सुंदर सूत्र है, कहते हैं जब भोजन करो ना तो उसको दृष्टि दो। कौन सी दृष्टि? जो मन के संकल्प हैं वो पवित्र हो, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, और पवित्रतम परमपिता परमात्मा की संतान, उनसे शक्ति लेकर, पवित्रता की शक्ति लेकर इस भोजन को मैं वो दृष्टि दे रही हूं, और ये भोजन पवित्र बनता जा रहा है। चाहे दवाई भी खाओ ना तो भी इसी स्मृति से खाओ, इसी स्मृति से। 25 गोलियां खानी पड़े तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इसी स्मृति से खाओ, तो गोली की जो नेगेटिविटी है ना वो निकल जाएगी, और जो उसका पॉजिटिव असर है ना वो शरीर को लग जाएगा। ऐसे ही भोजन का भी होगा, भोजन शुद्ध हो जाएगा। इसलिए शुद्ध भोजन ग्रहण करो परमात्मा की याद में। तो परमात्मा उसका नाम गुणवाचक कर्तव्यवाचक है, और उसका रहने का स्थान, उसका रहने का स्थान। इसे कहते हैं दो बातें याद करो, एक तो उसे याद करो, एक उस ज्योतिर्मय बिंदु को याद करो, दूसरा उसके घर को याद करो। आपने कल एक चित्र देखा होगा आत्मा के लेसन में, तीन लोक का चित्र, वो यहाँ लगाना रह गया है, वो तीन लोक का चित्र जिसमें तीन लोक बने हुए हैं। एक सबसे पहले नीचे वाला जो साकार मनुष्य लोक, उसके ऊपर सूक्ष्म लोक जिसमें ब्रह्मापुरी विष्णुपुरी शंकरपुरी, लेकिन उसके भी ऊपर जो ब्रह्म लोक है, परलोक है, जो परम धाम है, जो शांति धाम है, जो परलोक है, जो ज्योति का देश है, जो परमात्मा का रहने का स्थान है, जो हम सब आत्माओं का रहने का स्थान है, जिसे परम धाम कहा गया है, जहां के हम रहवासी हैं, असल में हमें वहीं जाना है वापस, फिर आएंगे, वहां रह नहीं जाएंगे, जाएंगे आ जाएंगे, वो केवल रेस्ट का स्थान है। और हमारे पिता परमात्मा भी तो वहीं रहते हैं, बच्चा दिन भर काम करता है, आखिर रात को कहाँ जाता है? अपने पिताजी के पास। वही सुकून मिलता है ना, वही आराम मिलता है। तो परमात्मा उस परम धाम में रहने वाला, हम सब आत्माएं भी उस परम धाम में रहने वाली, हमारा वो निज घर, हमारा वो निज धाम, उस धाम को भी याद करना है, क्योंकि वो भी शांति धाम है, वो भी परम धाम है, वहां भी असीम शांति है, असीम शांति। तो उस धाम को हम याद करते हैं। तो परमात्मा का नाम, उसका रूप, उसका देश हमने जाना। अब वो किस समय आते हैं, काल कौन सा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इस बात को अंडरलाइन करना कि उसका आने का समय कौन सा है, किस समय वो इस धरती पर आते हैं। क्या कभी भी आ जाते हैं? ये दुनिया तो एक साइकिल में चलती है और ये साइकिल चलता ही रहता है, इट नेवर स्टॉप्स, इट इज ऑलवेज ऑन मूव। क्या कभी भी परमात्मा धरती पर आ जाते हैं? नो, उनका भी टाइम है, वो भी बकायदा टाइम के अनुसार आते हैं। दिस इज ए टाइम साइकिल, आप जानेंगे उसके बारे में भी आगे आने वाले लेसन्स में। तो उस टाइम साइकिल में परमात्मा का आने का समय कब है? मैं थोड़ा सा बता देती हूं टाइम साइकिल के बारे में। इस टाइम साइकिल में अगर हम एज के हिसाब से देखें, उसको चार एजेस में बांटा गया है, एक गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज। सतो प्रधान अवस्था, सतो सामान्य, रजो प्रधान, तमो प्रधान, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग, ये हम सभी जानते हैं, ये पक्का है। कि क्यों कलयुग है? क्योंकि कलयुग की निशानियां हैं, दिखाई देती हैं। भाई कलयुग की निशानियां हैं, गौ विष्ठा में मुंह डालेगा, चांद को सीढ़ी लग जाएगी, केशव का श्रृंगार बच जाएगा, बाकी श्रृंगार तो गायब हो जाएंगे। बहुत सारी निशानियां हैं, आप सभी जानते हैं। तो कलयुग चल रहा है, ये हम सब जानते हैं। और अभी तो केवल कलयुग नहीं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, घोर कलयुग चल रहा है। क्योंकि चीजें जो बन रही हैं, मनुष्य जैसे हो गए हैं, उनका व्यवहार जैसा हो गया है, वो कलयुग में ही हो सकता है, और कहीं नहीं हो सकता। तो अब जब कलयुग चल रहा है, और कलयुग लगभग लगभग अपनी चरम सीमा पर है, चरम सीमा माना इट इज अबाउट टू एंड, कलयुग के बाद, क्योंकि साइकिल है, इट हैज टू मूव। कलयुग के बाद क्या आएगा? सतयुग। साइकिल मूव करना है ना, यहाँ वो पिक्चर नहीं है, वो पिक्चर देखेंगे तो आपको ख्याल में आएगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सतयुग। तो दो का एक मिडिल टाइम आता है, जैसे सुबह दिन, उसके बाद रात, दो के मिडिल का टाइम इवनिंग शाम, ऐसे ही दो के मिडिल का टाइम। अब ये रात का टाइम चल रहा है, घोर रात्रि, कलयुग माना घोर रात्रि, और मॉर्निंग आनी है, सुबह आनी है। सुबह कौन सी वाली? सुबह 8 बजे वाली। लेकिन उससे पहले क्या आता है? सुबह सुबह क्या टाइम होता है? सुबह 4 बजे, सुबह 4 बजे अमृत वेला, टाइम ऑफ नेक्चर, अमृत का टाइम, जब परमात्मा नेक्चर, अमृत बरसाते हैं, उनके वाइब्रेशंस, उनकी शक्ति, उनकी ताकत मिलती है, वो अमृत का समय। तो इस साइकिल में वो अमृत वेले का समय चल रहा है, साइकिल में वो अमृत वेले का समय, परमात्मा की पधरामणि इस धरा पर हो चुकी है। ताली तो बजाइए, परमात्मा की पधरामणि इस धरा पर हो चुकी है, ही हैज ऑलरेडी कम, और वो ऑलरेडी हम बच्चों को मिलने के लिए आ चुके हैं, मिल रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, प्रेम बरसा रहे हैं, लुटा रहे हैं, ले लो जिसको लेना है। और इस समय को हम कहते हैं, ये इस पूरे साइकिल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड है, और मोस्ट प्योर पीरियड है, मोस्ट प्योर, क्योंकि परमात्मा है यहां पर। टाइम बदल जाता है ना व्यक्ति के आने से, वाइब्रेशंस चेंज हो जाते हैं। हम सभी बैठे हुए हैं, अगर मान लीजिए इसी समय हमारी दादी जी मंच पर आ जाए तो क्या होगा? आप सभी खड़े हो जाएंगे, है ना? क्यों? वाइब्स बदल गए, वाइब्स बदल गए। तो परमात्मा के इस धरा पर आने पर वाइब्स बदल जाते हैं, वाइब्रेशंस चेंज हो जाते हैं, और जब वाइब्रेशंस बदलते हैं तो वातावरण बदलता है और वो ग्रेजुअली फैलता है। आप सोचिए, इस विद्यालय को 90 वर्ष हो गए हैं, आज की तारीख में लोग जानने लगे हैं। इतने साल तक तो लोग विरोध ही करते आ रहे थे, अब पता चल रहा है कि यहाँ ज्ञान सुनाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, यहाँ तो स्वयं परमात्मा है, अब पता चल रहा है लोगों को। धीरे 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 कितना पेशेंस लगा होगा, कितनी टॉलरेंस लगी होगी विरोध को सहन करने में, आप सोचिए तो सही। लेकिन क्योंकि कार्य परमात्मा का है, ये किसी मनुष्य का नहीं है, किसी मनुष्य का नहीं है, ये स्वयं उस परम पिता परमात्मा, हमने इसको अनुभव किया है। हम आपको स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे सकते हैं कि ये भगवान का कार्य है, हमने अनुभव किया है, और हम जैसे लाखों मनुष्यों ने अनुभव किया है, जो ये गारंटी कर सकते हैं कि यहाँ ये ज्ञान देने वाला कोई मनुष्य आत्मा नहीं, लेकिन स्वयं परमपिता परमात्मा जो निराकार है, जो ज्योतिर्मय बिंदु है, वो इस समय इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं, और अब इस युग का नाम बदल चुका है, इट इज नो मोर कलयुग, अब इसको हम कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम माना वो युग जहां आत्मा पुरुष, आत्मा को पुरुष कहा है, आत्मा रूपी पुरुष उत्तम बनती है, श्रेष्ठ बनती है। संगम युग, कलयुग और सतयुग का संगम युग, जब परमात्मा इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं, और इस धरा पर अवतरित होकर के वो ये कार्य इस दुनिया के परिवर्तन का, दुनिया को फिर से सतो प्रधान बनाने का, फिर से श्रेष्ठ बनाने का कर रहे हैं, और यही उनका कर्तव्य है, यही उनका कर्तव्य है। ये कर्तव्य और कोई कर ही नहीं सकता, वो स्वयं पतित पावन है, पतितों को पावन बना रहे हैं, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं, दुनिया को सतयुग बना रहे हैं। और ऐसे परमपिता परमात्मा जो हमारे टीचर भी हैं, हमारे सद्गुरु भी हैं, हमारे गाइड भी हैं, हमारे प्रोटेक्टर भी हैं, हमारे मददगार हैं, किसी भी समय, किसी भी समय बस आप उनको प्यार से बुलाना, बाबा आओ, बस आपके पास वो इमीडिएटली मदद करने के लिए आ जाएंगे, इमीडिएटली। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं, लाइव एग्जाम्पल्स, लेकिन अभी मैं वो नहीं दे रही हूँ क्योंकि समय आगे आगे भाग रहा है, आपकी आगे की दिनचर्या है, लेकिन मैं इतना जरूर निवेदन करूंगी कि अभी तो हमने कुछ बातें आपको बताई हैं, लेकिन आप इस प्रोग्राम के बाद, ये आपका मॉर्निंग का लेक्चर होता है, मेडिटेशन सेशंस जिसमें चलते हैं, उसके बाद आपके टेक्निकल सेशंस चलते हैं, लेकिन इन बातों को आप और गहराई से जानिएगा। जितने भी टेक्निकल सेशंस है वो इन्हीं सेशंस के ऊपर आधारित है, इन्हीं सेशंस के ऊपर, इन्हीं इसी ज्ञान से वो ज्ञान आया है, परमात्मा का ही दिया हुआ ज्ञान है, वो भी भले किसी किताब में भी लिखा हुआ हो, लेकिन फिर भी उसी का दिया हुआ ज्ञान है। इसलिए इस ज्ञान को और अधिक जानने के लिए, अनुभव करने के लिए, जब आप अपने अपने स्थानों पर जाएं, आपके स्थानों पर वहां हमारे केंद्र बने हुए हैं, सेवा केंद्र, और उन सेवा केंद्रों पर ये ज्ञान की डिटेल रोज, इसके क्लासेस होते हैं रोज विदाउट फेल, वहां जाइए, समझिए, इन्हें अनुभव कीजिए और अपने जीवन में वो पाइए जो आपने आज तक भल नहीं पाया, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आज ये मिला है तो इसे भूलिएगा मत, और इसे अपने जीवन में पाकर अत्यंत भाग्य का अनुभव कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।